ये 1 रुपया।
ये शंभु ढलकिया बड़ा पाजी है, कहरवा छोड़ कुछ बजाता ही नहीं। हमें कह रहा हूँ कि लगा तीन तार, लेकिन किसी की सुने तब ना। ये ढलकिया से तो हमारा जी बिल्कुल खट्टा हो गया। हाँ बेटी मुन्नी, कितने पैसे हुए?
चाचा पूरे 11 रुपया 75 नए पैसे।
हाय रे दुनिया, सुबह से गा गा के गले का फटा बांस हो गया और मिलता क्या है 11 रुपया 75 नवा पैसा। अब भला बताओ इसमें कोई क्या नहाए क्या निचोड़ा है?
अरे चाचा इसमें हम सब खाना भी खा लेंगे और खोली का भाड़ा भी जमा हो जाएगा।
अरे इस बात की चिंता हमको नहीं है, हमको तो जो बात अंदर अंदर खाए जा रही है वो है तुम दोनों की। क्या जतन करें जिससे तुम दोनों को स्कूल में भर्ती करा दे, ये तो हम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है भाई। नहीं तो जिस दिन तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं,
डैडी,
हाँ जिस दिन तुम्हारे डैडी हमको मिल गए वो तो कहेंगे वाह जी वाह, तुमने तो लगा दिया रास्ते हमारी औलाद को। हाँ?
अरे चाचा अगर हमारे डैडी आपसे कभी मिले तो बहुत खुश हो जाएंगे।
अरे भाई खुश क्यों नहीं होंगे, खुश तो होना चाहिए, ऐसी क्या बात है। मगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो लेकिन साहब ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि डॉन मर चुका है? आप खड़े पुलिस के आदमी, जो बात आपने पुलिस को नहीं बताई वो मुझे बता दी क्यों?
तुम्हें ये बताना जरूरी था इसलिए।
मुझे बताना जरूरी था? अजय साहब मैं ठहरा गाने बजाने वाला आदमी, मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक?
ताल्लुक है और बड़ा अजीब ताल्लुक है। ये देखो डॉन की तस्वीर।
ये आदमी डॉन है लेकिन ये तो मैं हूं।
ये डॉन है।
तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह आए?
हाँ और इस तरह तुम हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो।
नहीं नहीं डीएसपी साहब, मुझे तो आप माफ कर दीजिए। अभी अभी आप कह रहे थे कि उनके आदमी ने आपके 3 इन्फॉर्मर मार दिए हैं। अजी सूरत शकल मिलने से क्या होता है, वो लोग तो 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि। देखिए पकड़िए जरा, मैं समझाता हूँ। कहाँ डॉन जो जरा जरा सी बात पे गोली चला देते थे, और कहाँ मैं, मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता।
मैं तुम्हें सबसे खा दूंगा।
अजी लिखने से क्या होता है, उनके आदमियों को तो पता चली जाएगा ना।
मुझे किसी तरह भी पता नहीं चलेगा। देखो ये राज के डॉन मर चुका है, अब मेरे सिवा सिर्फ तुम जानते हो। और ये राज के तुम डॉन नहीं हो, कोई और हो। तुम्हारे सिवा अब सिर्फ मैं जानूंगा। डॉन के साथियों की तरह पुलिस भी तुम्हें डॉन ही समझेगी।
अब कहीं मुझे पुलिस वालों ने डॉन समझ के पकड़ लिया था, मैं तो गया ना 12 के भाव में।
उसके लिए मैं हूं ना। तुम्हारी मदद से पुलिस जब उन लोगों को पकड़ लेगी तो मैं कह दूंगा कि तुम डॉन नहीं हो, तुम मेरे आदमी हो, इन्फॉर्मर हो।
वो सब तो ठीक है डीएसपी साहब, लेकिन लेकिन मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए, तो बड़ा खतरनाक काम मालूम पड़ता है भाई।
कैसे आदमी हो तुम, जरा से खतरे से इतना डरते हो?
पहले नहीं डरता था डीएसपी साहब, पहले की बात और है। पहले मैं अकेला था, तब आपने कहा होता तो मैं झट से तैयार हो जाता है कि जीना मरना क्या, चलो ये काम भी करके देखते हैं। हाँ लेकिन क्या है डीएसपी साहब, अब मैं अकेला नहीं रहा। ये देखिए, अब मेरे पास दीपू हैं, मुन्नी हैं। आपके कहने पर कि बेटा कुएं में कूद जा, मैं तो कूद जाऊं, लेकिन कहीं उन लोगों ने पहचान लिया कि मैं डॉन नहीं कोई और हूं तो वो तो मेरी टिक्का पोटी करके भेज देंगे। फिर इन बच्चों का क्या होगा, ये बेचारे तो फिर से फुटपाथ पर पहुंच जाएंगे।
लगता है थोड़े ही दिनों में इन बच्चों से बहुत प्यार हो गया तुम्हें।
हाँ साहिब वो तो है, इनका मेरे सिवा और कौन है, और फिर ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं।
इनके मासूम प्यार के बदले में तुम इन्हें क्या दे रहे हो, सड़कों पे नाचने गाने की तालीम, आवारा गर्दी की जिंदगी? तुम चाहो तो ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं।
लेकिन कैसे?
मैं इन्हें सब कुछ दूंगा जो इन्हें चाहिए। मैं इन्हें हॉस्टल में दाखिल करा दूंगा, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं इन्हें।
अगर मैं आपका यह काम कर दूं,
देखो डॉन या डॉन के साथियों से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों के जुर्म समाज के जिस्म पे ऐसे ही नासूर हैं जैसे इन बच्चों की गरीबी। तुम इन लोगों के जुर्म मिटाने में मेरी मदद करो, मैं इनकी बदनसीबी मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो मंजूर है?
ठीक ठीक है।
विजय, मैं तुम्हारे एहसान के बदले में इन बच्चों की तालीम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और ये भी कोशिश करूंगा कि पता चल जाए कि इनका बाप कौन है और कहाँ है।
अरे जज जी, तुम इतना सोचते क्यों? एक महीने की तो बात है, एक रोज तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चे मिल ही जाएंगे। लेकिन जसजीत, ये हुआ कैसे?
इंसान अपनी बुराई छोड़ सकता है काका, लेकिन इंसान की बदनामी हमेशा उसके साथ रहती है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन दुनिया मुझे माफ ना कर सकी।
हेलो जी।
हेलो,
आओ
कार में बैठो। नहीं नारंग, मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूं।
जसजीत, इसीलिए तो पैदल जा रहे हो। खैर, रास्ते अलग सही, थोड़ी दूर तो एक साथ चल सकते हैं।
आओ,
मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मुझे तुमसे एक काम है। हर महीने की पहली तारीख को रतनलाल मिल्स के हेड ऑफिस से एक वैन उनकी 5 महीनों का पेरोल लेकर निकलती है, जिसमें तकरीबन 11 लाख के करीब करीब होता है। वैन के चारों तरफ गार्ड्स होते हैं और वो ऑफिस से आधे घंटे में मिल तक पहुंचती है। हम तुम्हें चलती वैन के अंदर पहुंचा सकते हैं।
इस नेक काम के लिए तुमने मुझे क्यों याद किया? तुम्हारे पास तो और बहुत से आदमी हैं।
वैन के अंदर एक तिजोरी है जिसमें सारा पैसा होता है। इतनी बड़ी तिजोरी को आधे घंटे में तुम्हारे सिवा और कौन खोल सकता है?
आदमी समझदार हो। ड्राइवर, गाड़ी रोको।
तुमने जवाब नहीं दिया।
मैंने पहले कह दिया ना कि हमारे रास्ते अलग हैं।
बेवकूफ मत बनो। इस सर्कस की मामूली सी नौकरी में रखा ही क्या है? इस एक काम के लिए तुम्हें 1.5 लाख रुपए मिल सकता है।
कोई चांस नहीं।
जे जे।
मिस्टर नारंग, मैं अपनी गरीबी में खुश हूं, और हां, यहां तकलीफ देने का शुक्रिया।
ड्राइवर, चलो।
डैडी, डैडी, डैडी,
क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो?
डैडी, डैडी, मम्मी हॉस्पिटल में है।
हॉस्पिटल में?
हाँ डैडी, मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी और पड़ोस वाली आंटी उन्हें हॉस्पिटल ले गई है।
तुम लोग घबराओ नहीं, मम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ, तुम लोग अंदर बैठो, मैं अस्पताल जाकर वापस आता हूँ। जाओ, चलो चलो।
आपकी पत्नी की जान खतरे में है और हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए हमें एक डॉक्टर बाहर से बुलाना होगा। क्या ये सारा खर्चा बर्दाश्त?
आप पैसे की फिक्र न कीजिए, किसी भी तरह मेरी बीवी की जान बचा लीजिए। पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मैं क्या और आया?
पैसे की बात छोड़ो, पहले ये तो पूछो कि तुम्हारी नौकरी भी बाकी है या नहीं।
केशव साहब, ये आप क्या कह रही हैं?
बिल्कुल वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। मैंने तुम्हें निकालने का फैसला कर लिया है। कल से तुम्हें नौकरी पर आने की जरूरत नहीं।
मगर सुनिए तुम, ऐसा क्यों?
मैं तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम जा सकते हो।
कमीने, जी चाहता है तुझे गंदे कीड़े की तरह मसल दूं, मगर मैं अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहता।
वेरी गुड, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी से भूल कर भी कहा कि तुमने जेजे को हमारे कहने से निकाला है, तो मैं इस पिस्तौल की गोली से तुम्हारे माथे पर एक तीसरी आंख बना दूंगा।
रतनलाल मिल्स की वैन इस रास्ते से जाती है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर तुम्हें उस वैन के अंदर दाखिल होना होगा।
लेकिन नारंग साहब, आपने ये नहीं बताया कि मैं वैन में दाखिल कैसे हूंगा।
उसका रास्ता वैन की वर्कशॉप में बना दिया गया है। तुम्हें सिर्फ 2 स्क्रूज खोलने होंगे।
अपना सिगरेट केस उस वैन में भूल आए थे, पहचानते हुए से तलाशी लो इसकी। गुड
डीएसपी साहब, आप जो चाहिए सजा दे दीजिए मुझे, लेकिन इस वक्त ये रुपए दे दीजिए, ये रुपए मेरी बीवी को जिंदगी दे सकते हैं।
ये रुपए चोरी के हैं।
डीएसपी साहब, मैं अपने जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, भगवान के लिए मेरी बीवी को।
आई एम सॉरी जसजीत, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ले जाओ इसे।
और उस गोली से जख्मी होकर पतली रस्सी पर सीधा चलने वाला बाजीगर जे जे इस काबिल नहीं रहा कि वो जमीन पर भी सीधा चल सके। मेरी बीवी अस्पताल में मर गई, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए, और ये सब उस डीएसपी की वजह से हुआ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा काका, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
देखिए आपने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म।
अरे क्या बात है, अभी तुम लोग आ रहे थे ना तो मैंने पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये कौन साहब बहादुर और मैम साहब चले आ रहे हैं भाई, फिर देखा तो अरे ये तो अपने दीपू मुन्नी है। हाँ भाई वाह, बना दिया ना चाचा को मामा।
चाचा स्कूल बहुत अच्छा है और टीचर भी अच्छे और हॉस्टल भी अच्छा है।
अरे फिर क्या बात है, तुम दोनों खूब मन लगा करके पढ़ो, और राम जी ने चाहा तो दीपू तो बड़ा होकर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, और तुम बन जाओगी बहुत बड़ी डॉक्टर साहब। अरे लो मैं तो भूल ही गया भाई, ऐसे करारे चने लाया हूँ तुम दोनों के लिए, ये लो ये लो। खोलो खोलो।
अरे चना मसाला।
हाँ।
चाचा हाँ। यहाँ हॉस्टल में चने नहीं मिलते, फिर? सिर्फ पुडिंग मिलता है।
अरे इसीलिए तो लाया हूँ तुम दोनों के लिए बच्चा। हाँ? खा लो खा लो खा लो। हाँ तो डीएसपी साहब भाई, आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, बोलिए क्या करना, मैं तो तैयार हूँ।
तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम तैयार पूरी ट्रेनिंग के बाद हो। एक एक स्टाइल गौर से देख लो, चाल देखने का अंदाज।
लेकिन डीएसपी साहब, आपने जो कुछ भी इस डॉन के बारे में बताया बहुत खुलासे में बताया, कहने का मतलब यह है कि बहुत कम बताया। अब देखिए ना, आज तक मैं उसके साथियों का नाम तक नहीं जानता हूं, और ना ही ये जानो उसकी छोटी छोटी आदतें, उसका उठना बैठना, उसका रंग ढंग, उसके तौर तरीके। यानी कि समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूं।
मैं जानता हूं मैं तुम्हें डॉन के बारे में ज्यादा नहीं बता सका, लेकिन
हाँ
इसकी भी तरकीब है मेरे पास। जब डॉन अपने साथियों के पास पहुंचेगा तो वो जख्मी और बीमार होगा, अपनी याददाश्त खो चुका होगा, समझ गए?
समझ गए।
जैसे जैसे तुम्हें डॉन के पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस आती जाएगी, समझ गए?
डीएसपी साहब एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आप जो हर बात पर मुझसे पूछ लेते हैं कि समझ गए, तो क्या आपने हमको बिल्कुल शिकारपुर का समझ रखा? अरे भाई समझेंगे कैसे नहीं।
डॉन पान नहीं खाता था?
हाँ पान नहीं नहीं खाते, ये बहुत बुरा करता था डीएसपी साहब। खैर अब ये आदत भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फिर वहां पहुंचकर। हाँ डीएसपी साहब, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे?
इसकी भी तरकीब है मेरे पास।
तरकीब है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं।
हेलो कौन बोल रहे हैं आप, प्लीज जरा जोर से बोलिए।
मिस्टर वर्मा, मैं आपको बता सकता हूं कि डॉन कहां छुपा हुआ है।
डॉन?
ये बात छोड़िए कि मैं कौन हूं, आप ये सुनिए कि डॉन कहां छुपा हुआ है।
एक्सक्यूज मी।
यस मिस्टर मलिक।
डीएसपी साहब, लगता है डॉन हमें मिल गया है।
रियली? यस सर, अभी अभी गुमनाम फोन आया था, किसी ने हमें डॉन का पता बता दिया है।
तो तुम्हें इंतजार के साथ का है, कम ऑन लेट्स गो।
मिस्टर मलिक, डीएसपी साहब।
वर्मा,
डॉक्टर का कहना है कि डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल याद नहीं।
कुछ भी हो, हमें किसी भी कीमत पर डॉन को पुलिस के हाथों से निकालना है।
लेकिन हॉस्पिटल में कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। मेरे ख्याल से जब पुलिस डॉन को हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट कर रही होगी, उस वक्त उसे वहां से निकाला जा सकता।
मैक, तुम क्या समझते हो कि हॉस्पिटल से जेल डॉन को पैदल एक ऑफिसर के साथ भेजा जाएगा? अगर हॉस्पिटल में इतनी हिफाजत है तो सोचो रास्ते में कितनी होगी। तो फिर करना क्या चाहिए? डॉन को हॉस्पिटल से ही निकालना होगा। एक्सक्यूज मी।
यस मैडम।
मैं अंदर जा सकती हूँ? पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, टेम्परेचर देखना है और ब्लड प्रेशर भी चेक करना है।
ठीक है, आप जा सकती हैं।
थैंक यू वेरी मच।
क्या बात है?
यस, व्हाट डू यू
वांट? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए।
क्यों, मेरे बाहर जाने की क्या जरूरत है?
यू नो, पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, चेंज करना है, प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए।
ओके ओके, लेकिन जरा जल्दी।
थैंक यू।
कहाँ गया वो?
वो उधर से वहाँ वहाँ।
चलो मेरे साथ आओ।
क्या बात है इंस्पेक्टर साहब?
सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू, हमको अभी अंदर से ऑर्डर आया है कि कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के बाहर नहीं जा सकती। पीछे क्या है?
कुछ नहीं, डेड बॉडी है।
ओह आई सी, कम ऑन इंस्पेक्टर। ओके, लेट देम गो।
मिस्टर वर्मा, मैं आपकी पुलिस फोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल में डॉन की सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छी तरह से नहीं किया।
देखिए मिस्टर मलिक, इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, वो सारा इंतजाम डीएसपी साहब के हाथ में था और वो मेरे सीनियर हैं।
यस, मैं आपकी पोजीशन को समझता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी काफी लापरवाही से काम दिया।
फिर भी मिस्टर मलिक, डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है, इसलिए ना वो हमारे काम का था और ना अपने साथ।
आपने शायद मेडिकल रिपोर्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ा। मिस्टर वर्मा, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसे केसेस में मरीज को दोबारा अगर उसके पुराने हालात में ले जाया जाए, उसकी पुरानी जिंदगी को बार बार उसके सामने दोहराया जाए, तो उसकी याददाश्त वापस भी आ सकती है।
आई सी,
तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है।
तुम ताश में हमेशा जीतते हो डॉन, याद है उस दिन यहाँ से जाने से पहले तुमने मुझे ये 3 पत्ते दिखाए थे?
और फिर ताराचंद का फोन आया था, ताराचंद याद है तुम्हें?
याद करो डॉन, याद करो।
ये डायरी तो तुम्हें याद होगी, जाने से पहले तुमने इसको देखा था। इसमें हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसको तुमने अपने हाथों से सेफ में रखा था।
कुछ याद आ रहा है?
धीरे धीरे, लेकिन अभी तक पूरा नॉर्मल नहीं है। हर चीज को ऐसे देखता है जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी पहले से बेहतर है, काफी बातें याद आ गई हैं।
लेकिन तुम्हें इंतजार किस बात का है?
मुझे इंतजार है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाए। मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। जब मैं उसे बताऊं कि रमेश मेरा भाई था, तो उसे मालूम होना चाहिए कि रमेश कौन था। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, मुझे लगता है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा।
मैं डॉन के बारे में इतना जान गया हूं कि अब मेरी याददाश्त वापस आ सकती है।
गुड, लेकिन ये काम इतनी समझदारी से करना होगा कि उन्हें कोई भी शक ना होने पाए।
ये मैं भी सोच रहा था कि जब बिना किसी वजह के याददाश्त जाती नहीं तो बिना किसी वजह के आती भी नहीं।
वापस आने की वजह मैं पैदा कर दूंगा। तुम जब यहां से घूम फिर के वापस हो तो हाईवे के पेट्रोल पंप पे अपनी कार रोक देना।
मैं भी आता हूं।
गाड़ी स्टार्ट करके रखो,
अपने हाथ ऊपर करो। आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। चुपचाप वहां पुलिस की जीप में चल के बैठ जाओ। चल।
रोको, गाड़ी रोको। याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैं कार में था और पुलिस मेरे पीछे। वो लोग मुझ पे यूं ही गोली चला रहे थे और फिर मुझे सब कुछ याद आ गया।
रियली डॉन, तुम्हें सब कुछ याद आ गया?
हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कौन हूँ, तुम अनीता, आजाद, नारंग, अशोक, विक्रम, मैक, एक एक बात वापस आ गई। मैं ठीक हो गया।
डॉन, देखते हैं तुम्हें सिर्फ अपने दोस्तों के नाम याद है या अपने काम और अपने दुश्मन भी। इसे पहचानते हो?
रमेश, ये तो वही गद्दार है जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया था।
Come on. तुमने एक बात नोट की?
क्या?
ठीक होने के बाद डॉन में काफी चेंज आ गया है।
हो सकता है, और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जिंदगी में हर बड़े एक्सीडेंट के बाद इंसान में कोई ना कोई चेंज तो आ ही जाता है।
मेरा मतलब है, पर तुम समझा नहीं सकते। डॉन, डॉन अब वो डॉन नहीं रहा।
डॉन तो वही है अनीता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अलबत्ता वो नहीं रही। कल तक तुम थी और आज
तो फिर ये चेंज मुझे ज्यादा दिनों तक दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि लड़की भी ज्यादा दिनों तक दिखाई नहीं देगी।
डॉन, सेठ कापड़िया का मैसेज आया।
क्या चाहिए सेठ कापड़िया को?
1000 सोने के बिस्किट्स।
हाँ, माल कहाँ चाहिए, यहाँ के इसके घर पे?
ना यहाँ ना वहाँ, उनका आदमी तुम्हें चाइना क्रीक पर मिलेगा। आज 4 बजे का अपॉइंटमेंट है।
ओके।
मिस्टर नारंग, सेठ कपाड़िया के आदमी के साथ कितने आदमी होंगे?
ये तो मैंने पूछा ही नहीं। यू आर राइट डॉन, तुम्हारा वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं।
मैं डॉन के साथ जाना चाहती हूँ।
मेरी बॉडीगार्ड बनके?
गुड आइडिया। रोमा जानती है कि रिवाल्वर कब और कैसे चलाना चाहिए।
सिर्फ कब और कैसे नहीं, किस पे चलाना चाहिए ये भी जानती हूँ।
सुथरा किस पे चला होगा किसी दिन ये फैसला, वो घड़ी आएगी आएगी जाना तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। तेरा आशिक जमाना औरों का दिल होगा तेरा निशाना, नाज न कर यूं तीरे नजर पे आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, वो घड़ी आएगी आएगी वक्त आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है।
Don't move, Don. मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था डॉन।
ये क्या मजाक कर रहे हो?
मैं देखना चाहती थी कि तुम रिवॉल्वर को अपनी तरफ देखकर डरते हो या नहीं।
अच्छा, तो हमारे हिम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा था।
जरा भी नहीं डरे, तुम तो सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो।
एक बात बता, एक सेकंड के लिए तो मैं सचमुच डर गया था। चलो बैठो।
ये क्या अनीता?
रोमा नहीं जानती कि जो रिवॉल्वर वो डॉन के साथ लेकर गई है वो खाली है।
लेकिन तुमने ये क्यों किया?
इसलिए कि पुलिस या किसी और का खतरा हुआ तो डॉन तो अपने आप को बचा लेगा, लेकिन रोमा।
हाय,